ओम शांति। हम सब बाबा के सहज योगी बच्चे, निरंतर योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी बनने का अभ्यास करते हैं। बाबा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा जिसके चेहरे से बाप दिखाई दे, ऐसा सहज योगी हो। नैनों में बाबा, मुख में बाबा, कर्मों में बाबा की याद, ऐसा योग बाबा ने हम सबको सिखाया है। लेकिन आज जिस विषय पर हमें क्लास दिया गया है उसे ज्वालामुखी योग कहा जाता है। ज्वालामुखी योग क्या है, कैसे सहज योगी हम बने और इसे ज्वाला नाम क्यों दिया गया है? अभी अभी हम गीत सुन रहे थे, तपस्या को अग्नि का रूप बताया गया है। जैसे अग्नि के अंदर कोई भी चीज पड़ती है तो परिवर्तन हो जाती है, ऐसे ही बाबा की याद जब पावरफुल होती है, एक बाबा दूसरा न कोई, तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन आ जाता है, पाप नाश हो जाते हैं, विकर्म नए विकर्म नहीं होते और आत्मा इतनी स्वच्छ पावन बन जाती है जो चारों तरफ उसका आभा मंडल ओरा जो बनता है उससे सेवाएं होती हैं। इसलिए बाबा हम सबको कहते, पहले सहज योगी स्वतः योगी बनो। सहज योगी बनते बनते जब निरंतर योगी बन जाओगे तो योग आपका स्वतः ज्वालामुखी हो जाएगा, बाबा के सिवाय और कोई दूसरा याद ना आए। हमारे भारत के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है ज्वाला देवी का मंदिर। वो ज्वाला जलाने वाली नहीं है, बहुत शीतल है, लेकिन वो निरंतर जलती रहती है, उसके दर्शन करने लोग जाते हैं। बाबा हम सबको जो योग सिखा रहा है, इस योग में आत्मा बाबा के प्यार में खो जाए। प्यार को भी अग्नि कहा जाता है। जैसे किसी से बहुत दिल का प्यार होता है तो उसके सिवाय और कोई भी दिखाई नहीं देता। कर्म कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कहीं पर भी चल रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जिससे दिल का प्यार होता है, बहुत गहरा हो जाता है, तो उसकी छवि, उसकी याद अंदर अंदर अपने आप उसको खींचती रहती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसको भी कहते हैं लोग कि इसको प्यार की आग लग गई, माना प्यार में दीवाना हो गया है, उसी को ही देखता है, उसी से बोलता है, उसी से बातें करता है। भले सामने मेरे है, मेरे से बात कर रहा है, लेकिन जिससे दिल की लगन लगी है वही उसकी बुद्धि में, उसकी नजरों में बसता है। तो बाबा भी हम सब की जो इतनी पालना कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इतनी प्राप्तियां जो हम सबको बाबा ने कराई हैं, अगर हम बाबा की प्राप्तियों को याद करते हैं, इस जीवन को याद करते हैं, तो बाबा के प्रति जो दिल का प्यार उमड़ता है, बस बाबा बाबा बाबा, जैसे दिल में एक बाबा ही बसता है, ऐसी सच्चे दिल के प्यार वाली याद अग्नि का रूप बन जाती है और उस अग्नि में संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, चेंज दिखाई देती है। क्योंकि हम सबको बाबा अपने समान प्योर बनाना चाहता है। बाबा हम सबको अपनी पहचान जब देते हैं तो कहते हैं कि जब तुम आत्माएं अपने घर से इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए आई, आपका वो ओरिजिनल स्वरूप क्या था? अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ। अनादि स्वरूप माना परम धाम में, और फिर आदि स्वरूप जब हम फर्स्ट जन्म में आए देवता रूप में, उस स्वरूप को स्मृति में लाओ। आत्मा कितनी गोल्ड, रियल गोल्ड थी, बिल्कुल प्योर थी, कोई संबंध नहीं थे, कोई बंधन नहीं थे, कोई दुख नहीं था, कोई भी कर्म नहीं हुए, बिल्कुल रियल गोल्ड थी। लेकिन जब शरीर के साथ संबंध में आती गई, पुनर्जन्म लिए, सतयुग के बाद त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया, तो इस देह का इसको संग लगता गया और देह के संग के कारण देह अभिमान बढ़ता गया। और जब द्वापर युग शुरू हुआ, जब आत्मा अपने स्व स्थिति को, स्व अभिमान को भूल गई, देह अभिमान में आ गई, तो इससे अनेक भी कर्म हुए, पाप कर्म होने लगे। और पाप करते करते अनेक पापों का बोझ चढ़ता गया। कर्म और फल, पाप कर्म किए उसके परिणाम स्वरूप दुख की भोगनाएं भोगते गए। और कलयुग के अंत तक अभी जब हम पहुंचे, जब तक बाबा के बच्चे नहीं थे, तो जितनी बुरी आदतें संसार में होनी चाहिए, वो सब बुरी आदतें, सब प्रकार के विकार, सब प्रकार की विकृतियां आत्मा के अंदर फुल फोर्स में थी। फिर बाबा ने अपना बनाया और अपना बना करके इतनी ज्ञान, इतना समझ दी तुम क्या थे, अब फिर से वैसा बनना है, मेरे साथ चलना है, इस स्वदर्शन चक्र को याद करो। और स्वदर्शन चक्र याद आते ही जब आपको अपना ओरिजिनल स्वरूप याद आएगा, तो मध्य के अंदर जो विकारों के कारण संस्कार हमारे बहुत देह मान वाले हो गए, उनको महसूस होगा कि ये गलत है, ये मेरे ओरिजिनल नहीं है, ये मध्यकाल के हैं और इन्हें मुझे परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करना है? बहुत सी विधियां हैं उसको परिवर्तन करने की, लेकिन सबसे पहले समझ चाहिए। कोई भी संस्कार को परिवर्तन करने के लिए लगता है कि ये गलत है, तो पहले समझ उसकी चाहिए गलत है, और समझ के बाद अंदर की महसूसता, रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, रियलाइज हो कि नहीं होना चाहिए। रियलाइजेशन के बाद अंदर के संकल्प में दृढ़ता, इसको कुछ भी हो जाए इस संस्कार को इमर्ज होने नहीं देंगे। और जब दृढ़ता का संकल्प आता है तो उसके बाद तपस्या शुरू होती है। सहन करना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है, कुछ सुनना पड़ता है, तब परिवर्तन होता है। तो जितनी भी आत्माएं हमारी, जो यादगार पूर्वज आत्माएं हुई हैं, ब्राह्मण कुल की पूर्वज आत्माएं नहीं, लेकिन भक्ति काल के अंदर भी कई आत्माएं अपने आप को पूर्ण परिवर्तन किया है। इसी आधार से हमारे इतिहास के अंदर भारत में दो तीन लोगों का बहुत गायन है। एक वाल्मीकि का गायन है जिसने रामायण लिखी, तुलसीदास और वाल्मीकि ये दोनों रामायण के लेखक बने, बहुत बड़ा रामायण ग्रंथ बना दिया। गौतम बुद्ध हुए, उनका भी इतिहास है। जितने महान पुरुष गाए गए हैं उन सब ने इसी जीवन में अपने आप को परिवर्तन किया। वाल्मीकि के लिए बताते हैं कि वो एक डाकू था और बहुत कठोर कड़े संस्कार वाला था, कोई को भी नहीं छोड़ता था, जो मिल जाए उसको मार करके पैसा उसे लूट लाता था। लेकिन वो एक बहुत बड़ा महान संत बन गया अपने एक ही जीवन के अंदर। कैसे बना तो इतिहास में बताते हैं कि वो एक दिन संतों को, साधुओं को जा करके पकड़ लिया और उनको लूटने लगा। तो संतों ने बोला, तुम ये किसके लिए कर रहे हो? तो बोला, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। इतना गलत काम तुम किसके लिए कर रहे हो? तो उसके मुख से निकला कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो संतों ने कहा कि तुम्हारे परिवार वाले इस कर्म का फल भी लेंगे, भोगेंगे? बोला, ये मुझे पता नहीं है। बोला, ऐसा करो, आप उनसे पूछ करके आ जाओ। तो उसने समझा वाल्मीकि ने कि ये साधु लोग मुझे बहका रहे हैं, मैं पूछने जाऊंगा तो ये भाग जाएंगे। तो उसने उन साधुओं को बांध दिया एक रस्सी से झाड़ के अंदर, और रस्सी से बांध करके फिर अपने घर गया और यही प्रश्न पूछा कि जो मैं आपके लिए इतना मेहनत से डाका डाल करके, लोगों को मार पीट करके कमा करके लाता हूं, आपका पालना करता हूं, क्या आप इसके पाप का भागी भी बनेंगे? तो परिवार वालों ने कहा, नहीं, ये आपका कर्तव्य है, आप चाहे जैसे लाओ उसका भागी आप बनेंगे, मैं नहीं। मैं थोड़ी पाप करने के लिए आपको कहता हूं। बस उसकी बुद्धि में बहुत अंदर जा करके लग गया कि मैं इतना इनके लिए पाप कर रहा हूं, इनको पालने के लिए मैं गलत काम कर रहा हूं, और उसका हिस्सा लेने के लिए एक भी तैयार नहीं है। बस उसके जीवन में महसूस हुआ, पहले समझ दी गई, समझ के बाद उसको रियलाइज हो गया कि ये गलत है, इसका पाप मुझे ही भोगना पड़ेगा। उसने साधुओं को छोड़ दिया जा करके, और जब छोड़ दिया तो उसके बाद साधुओं ने उसको कहा कि अब तुम तपस्या, क्योंकि संस्कार है ऐसे जल्दी खत्म नहीं होगा, इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो उसने जंगल में जाकर के इतना कठिन तपस्या की जो चारों तरफ उसके शरीर के ऊपर, खाना पीना सब छोड़ दिया, बैठ गया तपस्या के अंदर। उसके चारों तरफ से दीमक ने घर बना दिया, इतने बड़े बड़े बॉल जैसे बन गए। इतनी गढ़ कठिन तपस्या की, कोई चीज की परवाह नहीं की। तब उसको नाम मिला वाल्मीकि, भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उसका जीवन चेंज हो गया। उस समय से वो संत बन गया और उसने बहुत बड़ा इतिहास रामायण लिख डाली, वाल्मीकि का इतिहास बन गया, परिवर्तन हो गया उसका जीवन। बाबा हम सबको बहुत सहज योगी बनाता है, तपस्या ऐसे नहीं सिखाता है कि पानी छोड़ दो, खाना छोड़ दो, नींद छोड़ दो, कर्म छोड़ दो। लेकिन अगर मुझे कोई संस्कार परेशान कर रहा है, बार बार दिल को लगता है कि नहीं होना चाहिए, बाबा ने मुझे इतनी अच्छी जीवन दे दी, पवित्र बनाया, स्वच्छ बनाया, अपना बना करके हमको क्या बनाना चाहता है, फिर भी मुझे ये संस्कार क्यों परेशान कर रहा है? तो उसके लिए अंदर महसूस करना कि मुझे इसको परिवर्तन करना ही है। अब उसके लिए चाहिए तपस्या, उसके लिए चाहिए एकदम अंदर का संकल्प दृढ़ता का। बाबा उसके लिए कहता, बच्चे संकल्प की दृढ़ता ही तपस्या है, एक टांग पर खड़े होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे बन गए हो, हट नहीं करो। लेकिन अगर कोई कोई बात कह रहा है तो उसको सहन करो, दूसरों की बातों को परवाह न करके आपकी लगन हो कि मुझे अपने इस पुराने संस्कार को समाप्त करना ही है, ये मेरे इस ईश्वरीय मार्ग में रुकावट है। इसलिए बाबा कहता, रोज मुरली सुनो, पहले मुरली से समझ मिलती है, मुरली से समझ मिलती है, और जब समझ मिलती है तो उस पर जब गहराई में जाते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो रियलाइज होता है ये नहीं होना चाहिए, बाबा इतना प्यार कर रहा है, इतनी पालना दे रहा है, इतना सिखा रहा है, फिर भी मेरा ये संस्कार क्यों नहीं जाता, महसूस करो। और उसके बाद फिर संकल्प में इतना पावर ले आओ कि कुछ भी हो जाए मुझे इस संस्कार को जलाना है, भस्म करना है, ये संस्कार मुझे अब परेशान न करे। उसके लिए केवल एक व्रत बाबा कहता ले लो, क्योंकि बिना व्रत लिए हुए व्रतियां अंदर की चेंज नहीं होती। व्रत माना दृढ़ता का संकल्प। भारत के अंदर भक्ति में निर्जल लगते हैं, पानी नहीं पीते हैं। कोई चीज की सिद्धि प्राप्त करने के लिए अधिकतर कन्याएं माताएं भारत के अंदर ऐसा व्रत लेती हैं, मान लो उनको ये है कि मेरे पति की आयु बढ़ जाए, भावना है, उस आयु को बढ़ाने के लिए वो निर्जल रहेंगे, भक्ति करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, और अगर बीच में संकल्प आ जाए तो उसको पाप मानेंगे कि क्यों ख्याल आ गया पानी पीने का, क्यों भोजन करने ख्याल आ गया। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे खाओ पियो आराम से रहो, इसके लिए कोई मैं त्याग नहीं कराता, लेकिन केवल देह अभिमान का त्याग करो और आत्म अभिमानी की तपस्या करो, चलते फिरते उठते बैठते हमारी तपस्या क्या है, आत्मा को देखना, आत्मा देख करके बात करना, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना। तो ज्वालामुखी योग के लिए मैं आपको 5-6 ट्रिप्स, 5-6 बातें बहुत सरल रीति से बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान ये देना है कि आत्मा जो बहुत स्वच्छ थी, पवित्र थी, हीरा थी, उसके अंदर दाग जो लगा है वो लगा है देहमान का, इस पर धूल चढ़ी है पर चिंतन और पर दर्शन की, दूसरों को देखने के कारण। आत्मा को हमें स्वच्छ बनाना है, बस ज्वालामुखी योग इसीलिए है, इसीलिए इसको बाबा नाम देता है, आत्मा बिल्कुल स्वच्छ बन जाए, संपूर्ण चमकता हुआ डायमंड बन जाए, उसकी जो खाद पड़ी है, विकार आ गए हैं जो बार बार उसको परेशान करते, वो विकृतियां उसकी समाप्त हो जाए, बाप समान बन जाए, जैसी आई थी पवित्र वैसी पवित्र बन जाए, हिसाब किताब उसके चुकतु हो जाए, वो सजाओं से छूट जाए, ये बाबा का ज्वालामुखी योग के पीछे लक्ष्य है कि जब ऐसी याद होगी, ऐसा योग होगा जिसमें केवल एक बाबा, दूसरा न कोई, कोई देहधारी उसको डिस्टर्ब न करे। हम योग में बैठते हैं तो क्या होता, अब चेक करेंगे, अगर 10 मिनट में योग में बिठाऊं, 3 मिनट भी बिठाऊं, मन कहां कहां जाता है, किधर किधर भागता है। जबकि हम कहते हैं मन मेरा है, मैं मन का मालिक हूं, फिर भी कहना नहीं मानता। 3 मिनट के मेडिटेशन में अगर आप चेक करें तो मन की गतियां चारों तरफ से, जहां संबंध होंगे, जो कुछ सारे दिन में बीता होगा, जो दिनचर्या हुई होगी, जो गलत अच्छा काम हुआ होगा, वो याद आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ गई होगी तो बहुत फास्ट गति से याद आ जाएगा, कोई ने कुछ कह दिया होगा तो और जल्दी याद आ जाएगा, जो बात भूली हुई होगी योग में बैठते ही पहले वो याद आ जाएगी, वैसे नहीं याद आएगी। मन इतनी फास्ट गति से जाता है और फट से उसके तरफ भटक जाता है। मेडिटेशन होता ही नहीं, तीन मिनट भी नहीं होता। अब इसके लिए बहुत गहरा अटेंशन चाहिए, अटेंशन रूपी पहरेदार। जब बैठो आत्मिक स्वरूप को बार बार अंदर से इमर्ज करो, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, चिंतन में ले आओ, संकल्प चलाओ, ये शून्य नहीं करो। कई बार हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो संकल्प को शांत करके बैठ जाते हैं, शांत कर दिया, फिर थोड़ी देर के बाद क्या संकल्प करें, फिर इधर के संकल्प आए, उधर फिर हटाया, फिर किया मेहनत युद्ध। और बाबा कहता मैं अपने बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता, मेरे बच्चे मेहनत करें। इसलिए अगर कोई संकल्प पहले आते हैं तो बाबा कहता है बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के, स्वरूप के, चिंतन के संकल्प करो, स्व स्वरूप को सामने लाओ। मैं आत्मा एक लाइट हूँ, स्वरूप मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं इस देह से न्यारा हूँ, मैं इस भकुटी आसन पर हूँ। अभ्यास करो पहला। अभ्यास करते करते ऐसे लगेगा कि मैं इससे अलग हूँ, देह भान से अलग हो गया हूँ, हूँ देह में, देह से कहीं गया नहीं, लेकिन एकदम हल्कापन महसूस हो, एकदम लाइट माइट स्वरूप चमकता हुआ सितारा। और जब ये स्वरूप बनेगा, हल्के हो जाएंगे, तो अपने आप बाबा की स्मृति आने लगेगी, परमधाम की याद आएगी, घर की याद आएगी, स्वधर्म की याद आएगी। और उस स्वधर्म की याद के साथ साथ जब बाबा की याद जुड़ जाती तो अपने आप में वो शक्तियां अनुभव होने लगती, जैसे वो लाइट आ रही है, माइट आ रही है, बाबा के सब गुण शक्तियों के रूप में मेरे ऊपर आ रहे हैं, योग शक्तिशाली हो जाए, वही योग ज्वालामुखी कहलाता है। और उसी योग में भी कर्म दग्ध होते हैं, संस्कार चेंज हो जाते हैं, आत्मा महसूस करती है नहीं होना चाहिए। तो ऐसी तपस्या के लिए पहला अभ्यास है जितना हो सके मन और बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ, एकाग्रता। और एकाग्रता के लिए संकल्पों को मारना नहीं है, शून्य नहीं करना, शून्य होना एकाग्रता नहीं है, लेकिन एक की ओर अग्रसर। एकाग्रता माना एक की ओर अग्रसर, एक के ध्यान में मग्न, एक बाबा का चिंतन है, उसके स्वरूप का चिंतन है, उसके गुणों का चिंतन है, उसकी शक्तियों का चिंतन है, उसके द्वारा अनुभूतियों का चिंतन है, और चिंतन करते वो संकल्प की गति बहुत धीमी गति है, फास्ट नहीं है। और जब इसमें हम मन को मग्न कर देते हैं, पहले मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर मग्न हो जाते हैं, और जब मग्न आत्मा हो जाती है तो योग बहुत शक्तिशाली हो जाता है, खुद में भी सेवा होती है, संस्कार भी चेंज होते हैं, और जो उससे वाइब्रेशन फैलते हैं, जैसे आपने सुना होगा पुराने जमाने में ऋषि मुनि थे, भारत के अंदर बहुत से ऋषि मुनियों का गायन है, जंगल में रहते थे, आबू में भी अभी तक भी बहुत सी कुटियाएं हैं ऊपर पहाड़ों के ऊपर, कोई कोई अभी भी रहते हैं, बहुत दूर दूर हैं। उनकी ऐसी तपस्या है, वो जंगल शहर में नहीं आते हैं, रहते वहीं हैं, बैठ जाते हैं, भोजन पहचाने वाले गृहस्थी यहां से जाकर के पहाड़ी चढ़ करके भी दे आते हैं, उनको भोजन की भी इच्छा नहीं है, जो मिल जाए खा लेते हैं, चूल्हा भी नहीं जलाते, धुनी लगा देते आग की, बैठ जाते हैं तपस्या में, और उनके जो वाइब्रेशन होते हैं उसके कारण वहाँ शेर होंगे, चीते होंगे, अनेक प्रकार के हिरण होंगे, पशु पक्षी होंगे, सब शांत बैठे हैं तपस्या में। एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है और उसके जो शांति के वाइब्रेशन है, स्नेह के वाइब्रेशन है, पवित्रता के वाइब्रेशन है, वो जंगल के अंदर चारों तरफ पशु पक्षियों को प्रभावित कर रहे हैं। बाबा कहते इतने मेरे योगी बच्चे, मान लो आज 100 यहाँ बैठे हैं, 50 बैठे हैं, तो तपस्या में बैठ जाओ, एक बाबा के प्यार में खो जाओ, जो ये सन्नाटा, ये जो वाइब्रेशन चारों तरफ से जाएगा वो विश्व कल्याण की सेवा करेगा। आप कहीं करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बैठे यहाँ हैं, लेकिन आपकी जो साइलेंस की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, एक के लगन की शक्ति है, वो चारों तरफ वायुमंडल में फैल रही है। वो सेवा हो रही है, वो विश्व सेवा है। और बाबा अभी हम सबको बार बार कह रहे हैं, बच्चे विश्व के अंदर बहुत दुख बढ़ रहा है, बहुत अशांति बढ़ रही है, बहुत लोग टेंशन में हैं। आप बच्चों को मैंने बेफिकर बादशाह बनाया है, एकदम चिंता मुक्त बनाया है। तुम बच्चे बिल्कुल निश्चिंत खुशनुमा स्थिति में बैठ जाओ, खुशनुमा स्थिति, एकदम प्रसन्न चित्त स्थिति, और इस स्थिति में बैठ करके बाबा से बातें करो, रू ध्यान करो, वो खुशी का वायुमंडल चारों तरफ से फैल जाएगा अपने आप। आपके संस्कार भी चेंज हो जाएंगे और दूसरों की सेवा भी हो जाएगी। ये है डबल कार्य। इसलिए बाबा हम सबको कहते, बच्चे ज्वालामुखी योग करो, ज्वालामुखी योग करो, माना आपका मन बुद्धि केवल एक बाबा की तरफ टिका हुआ रहे। तो अभ्यास क्या करना, सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते पहला अभ्यास मैं आत्मा स्व शासक कर्म इंद्रियों की मालिक राजा हूं, इस अभ्यास पर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो बार बार देह अभिमान से दृष्टि वृत्ति बोल चाल बॉडी कॉन्शियस वाले हो जाते हैं। अभ्यास करो, जब किसी से मिलो, जब किसी से देखो, हमारे ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, हमारी दादियों ने शुरू शुरू में कितनी मेहनत की, सुना होगा हमारे इतिहास के अंदर कहानियों में 108 बार मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, पूरे परिवार के कई भाई बहनों के नाम लिख लिख करके आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, बहुत पक्का किया। मैं आत्मा हूँ, मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, जैसे रट लिया अंदर अंदर और उसका स्वरूप बन गए, आत्मिक स्थिति निरंतर हो गई। फिर कर्म इंद्रियों की आकर्षण, क्योंकि जितने विकर्म होते हैं वो कर्म इंद्रियों के कारण होते हैं, मन कर्म इंद्रियों के अधीन हो गया। मन और कर्म इंद्रियों की बहुत गहरी दोस्ती है। मन के अंदर संकल्प करो, कर्म इंद्रियों के अंदर हलचल हो जाएगी। मन को समझा के शांत कर दो, कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी, कर्म इंद्रियां तो जड़ हैं। तो बार बार मन मालिक, मन के मालिक बन करके आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान रहे। अब कब तक रहेगी, आप कहोगे कब तक रह सकते हैं, कर्म में आना है, व्यवहार में आना है, इधर जाना है, उधर जाना है, बार बार अभ्यास कैसे करें। अब उसके लिए दूसरी विधि बाबा सुनाते, कोई न कोई समान स्मृति में लाओ। बहुत से समान बाबा ने दिए हैं, जितने बाबा के टाइटल हैं उतने हम बच्चों के समान हैं। स्वयं स्वयं को मान दो, कोई कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं बाबा के नूरे रतन हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं आधार मूर्त हूँ, मैं उदाहरण मूर्त हूँ। ऐसे अगर लिस्ट निकालेंगे ना तो आपको कम से कम 365 समान की लिस्ट मिल जाएगी। मैंने एक बार निकाली थी, सबको दी थी कि आप रोज एक समान चिंतन में लाओ, उस पर चिंतन करो, मनन करो, जो व्यर्थ आता है ना इधर की बात उधर की बात, तो सब अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। स्वमान, स्वयं स्वयं को मान देना, स्वयं को मानना, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा स्वयं को मानना, इसको कहते हैं स्वमान। रियल स्वरूप को रियलाइज करना, इसको कहते हैं स्वमान में रहना। और स्वमान में रह करके फिर तीसरी बात पर ध्यान देना, जितना हो सके मैं हर आत्मा को अपने बोल से, अपने कर्म से, अपने वाइब्रेशन से सुख दे करके उनकी दुआएं ले लूं। अगर एक भी आत्मा किसी कारण से मेरे किसी कर्म से डिस्टर्ब हो गई और उसने मुझे बद्दुआ देना शुरू कर दिया, मेरा योग टूट जाएगा, लगने नहीं देगी वो। भले एक सामने नहीं है हमारे, वो दूर है, दुखी है, परेशान है, मेरे किसी कारण से मैंने ठग लिया, झूठ बोल दिया, उसका अपमान कर दिया, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया, मैंने उससे कोई गलत व्यवहार कर लिया, उसके जो संकल्प हैं वो मेरे संकल्पों को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए बाबा हम सबको कहता है, बच्चे पहले तो माता पिता की दुआएं लो, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की दुआएं मुझे मिले, आज्ञाकारी बनो, जो बाबा कह रहा है वो करते चलो, बस और कुछ नहीं। माता पिता की दुआओं के साथ साथ हमारे जो निमित्त हैं, बड़े हैं, हाँ जी करके उनके सहयोगी बन करके उनसे दुआएं ले लो। फिर जिन संपर्क संबंध में निमित्त आत्माएं हैं, कैसे करके भी मुझसे कोई डिस्टर्ब, मैं सबको अपनी तरफ से स्नेह दूं, सहयोग दूं। कोई अपने संस्कार के कारण है उसकी परवाह नहीं करना, उसके दुख में दुखी नहीं होना, उसके संस्कार के अधीन नहीं होना, मैं अपनी तरफ से प्रयास करके उसको संतुष्ट करूं। एक बार बाबा ने दादी जी से पूछा था, दादी प्रकाशमणि जी से, आपसे सभी लोग संतुष्ट हैं? तो दादी सोचने लगी, कैसे कहूं सब संतुष्ट, क्योंकि हेड जो होते हैं उनके ऊपर बहुत जवाबदारियां होती हैं, अगर जरा भी कोई निर्णय गलत हो गया तो एक संतुष्ट हो जाएगा, दूसरा नाराज हो जाएगा। तो दादी सोचने लगी, कुछ नहीं जवाब दे रही थी, तो बाबा ने कहा, अच्छा 90% संतुष्ट हैं? हाँ बाबा, 90% तो होंगे, जहां तक मैंने सोचा है 90-95% तक भी मैं संतुष्ट कर सकती हूँ, लेकिन 100% नहीं। तो बाबा ने बड़ा मुस्कुराया और बाबा बोले, बच्चे कोई बात नहीं, 5% जो आत्माएं असंतुष्ट हैं वो अपने संस्कार के कारण है, तुम्हारे कारण नहीं है। अगर उनका कोई संस्कार ऐसा है जो अपने आप को परेशान कर रहा है, उसकी तुम परवाह नहीं करो, तुम अपनी तरफ से प्रयास करो संतुष्ट करने का। संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, ये है दुआएं लेना और दुआएं देना। अगर मुझ आत्मा को परिवार, हमारे साथी, हमारे स्नेही सहयोगी दुआएं दे रहे हैं, माना हमारे प्रति अच्छे संकल्प, शुभ भावनाएं रख रहे हैं, तो मेरा योग बड़ा इजी है, जब बैठेंगे फट से लग जाएगा, बुद्धि का भटकना शांत हो जाएगा। और अगर कोई बद्दुआ दे रहा होगा तो बार बार वो डिस्टर्ब करता रहेगा अंदर। इसलिए ब्राह्मण जीवन में हमारा एक मूल लक्ष्य रहता है कि सब मेरे से प्रसन्न रहे, मैं कैसे भी करके उनको, श्रीमत का उल्लंघन करके नहीं, श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो बाबा की दुआएं नहीं मिलेंगी, श्रीमत की लकीर के अंदर रहते हुए हर आत्मा मेरे से संतुष्ट रहे, इसका मैं संपूर्ण प्रयास करूं। और अगर खुश रहे उसकी दुआएं मिलेंगी, मेरा योग सहज हो जाएगा और मैं बाबा के साथ कनेक्ट हो जाऊंगी। चौथी बात, एकदम एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ, मन बुद्धि दिल और शरीर, ये चार चीजें हैं। दिल कहते हैं भावनाओं को, ये दिल नहीं, हार्ट नहीं, शरीर का दिल नहीं, मन और बुद्धि के बीच में जो हमारे भावनाएं हैं बहुत अच्छी अच्छी, उसको कहते हैं दिल। मन भी स्थिर है, एकाग्र है, एक बाबा में लगा हुआ है, क्योंकि अच्छा अच्छा चिंतन, अच्छे विचार, प्राप्तियों की खुशी, हर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का अभ्यास, तो मन हमारा अपने आप कंट्रोल में है। और मन से जो विचार चल रहे हैं, बुद्धि उस दृश्य को इमर्ज कर रही है साथ साथ, और भावनाएं भी हैं, हमारा बाबा, हमारा घर, हमारा परिवार कितना अच्छा है, कोई नेगेटिविटी है ही नहीं भावनाओं के अंदर, दिल भी स्थिर है, एकाग्र है। और शरीर से भी जब बैठते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट होकर, स्थिर होकर, अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके जिस आसनी में बैठ सकते। बाबा ने ये भी नहीं कहा कि टांग पर टांग चढ़ा के बैठो, हट करो, जैसे सहज बैठ सकते हो। मन से एकाग्र हो करके बाबा से शक्तियां लो, योग ज्वाला रूप हो जाएगा। लेकिन कई बार अकेले में बैठते हैं तो थोड़ा समय योग अच्छा लगता है और उसके बाद बुद्धि इधर उधर भटकने लगती है। कभी कभी हम लोग अकेले जब योग करते हैं, अमृत वेले विशेष, 5-10 मिनट अच्छा योग लगता है, उसके बाद धीरे धीरे सुस्ती आना शुरू हो जाती है, बुद्धि भटकने लगती है और बैठे बैठे ही निद्रा लोक में चले जाते हैं। इसलिए बाबा हम सबको कहता है, बच्चे संगठन में आके बैठो, एक दूसरे के वाइब्रेशन जब अच्छे मिलेंगे, अच्छे योगी अगर सामने योग करा रहे होंगे, आप साथ में बैठे होंगे, तो सबका एक जैसा संकल्प, बहुत अच्छी ज्वाला निकलेगी उससे, योग ज्वाला रूप हो जाएगा। जैसे एक लकड़ी अगर जलाई जाती है तो उसकी ज्वाला कितनी होती, और अगर इकट्ठी होकर के 10-20 लकड़ियों इकट्ठा करके फिर आग लगाई जाती है तो बहुत तेज ज्वाला होती है। और जब ज्वाला रूप योग होगा एकाग्रता के आधार से संगठन में बैठने से, तो हमारे संस्कार भी चेंज होंगे, सामने वालों का भी योग सहज हो जाएगा और उसका जो आभा मंडल चारों तरफ से वाइब्रेशन जाएंगे, वो बहुत दूर दूर तक सकास मिलेगी लोगों को। तो बाबा हम सबको चाहता है, हम सबसे चाहता है कि मेरे बच्चों की इतनी अच्छी स्थिति हो, जो बैठे और मेरे पास आ जाए, मिलन होने लगे, शक्तियां लेने लगे, और उन शक्तियों के फुहारे के अंदर, जैसे कोई पानी में फुहारा हो, पानी का फुहारा चल रहा हो, उसके नीचे बैठ जाओ, कितनी शीतलता का अनुभव है, कितना अच्छा लगता है, जैसे फ्रेश हो गए। ऐसे बाबा की किरणों के नीचे बैठ गए तो चारों तरफ से ऐसे लगे शीतलता, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सब की झरने के रूप में मेरे ऊपर किरणें आ रही है, योग में अच्छे अनुभव होने लगेंगे। लेकिन ध्यान 2-3 बातों का बहुत जरूरी है। योग को निरंतर और ज्वालामुखी बनाने के लिए 2-3 बातों पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। पहली बात, जो कुछ बीता है उसका चिंतन नहीं करो। उसके लिए बाबा कहता है इतनी ब्रेक पावरफुल हो जो वो संकल्प बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे। अब उसकी विधि क्या है, क्योंकि इतनी जल्दी बीती बातें भूलती नहीं है। जो कुछ किए होंगे कर्म पिछले जन्मों के तो संस्कार बन गए, भूल गया, इस जन्म में जो हुआ है वो तो कहीं कहीं बार बार याद आता, और जब विशेष बैठते हैं याद में बाबा की याद में, तो वो बातें बीच बीच में डिस्टर्ब करती हैं। अब बाबा उसकी विधि बताते हैं कि अगर बार बार कोई बात आपके मन को डिस्टर्ब कर रही है तो एक पेपर लो, बहुत अंदर की सच्चाई से उसको लिख डालो। लिख करके किसी को दिखाने की देने की जरूरत नहीं है, बाबा के आगे सच्चे दिल से लिखोगे बाबा सुन लेगा, ऊपर देख लेगा बच्चे के अंदर कितनी सच्चाई है, और लिख करके फिर बाबा के बॉक्स में या बाबा के भंडारे में जा करके आग के अंदर डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, जला दो उसको, कोई को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सच्चाई से जो लिखा है उसको बाबा ने ऊपर पढ़ लिया, देख लिया, बच्चा बड़ा सच्चा है, माफ कर देता है, फिर शक्ति देता है, सकाश देता है, जिससे वो परिवर्तन हो जाता है। तो पहली बात, किसी भी बीती का चिंतन नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाओ। और अगर कोई के साथ ऐसी घटनाएं घट गई हैं तो बाबा कहता है बच्चे क्षमा कर दो और क्षमा ले लो। किसी के साथ भी कुछ गलत हो गया, मेरे से कोई डिस्टर्ब है, तो कई बार कोई आत्मा मेरे से डिस्टर्ब होती है तो हम उससे बात नहीं करते, बोलते नहीं है, उसे किनारा करके चलते हैं कि ऐसा व्यक्ति है, ऐसा है, ऐसा है। जब वो सामने आएगा उसी का रूप, उसी की बातें जो उसके साथ घटा है वो सब याद आ जाएगा। बाबा कहता बच्चे इतने नम्र बनो, इतने निर्माण बनो, अगर कुछ हो गया, लगता है मेरे से हो गया, सॉरी, माफी लेकर के सॉरी करके उस भूल को उसी समय समाप्त करो, नहीं तो भूल अंदर अंदर विघ्न रूप बनती रहेगी। इसलिए क्षमा करना और क्षमा लेना ये बहुत बड़ी आत्माओं का कर्तव्य। बड़े जो होते हैं ना महान, महान बने ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सबको क्षमा किया है। हमारे देवताएं, हमारे पूर्वज, हमारे जो मंदिरों के अंदर मूर्तियां हैं उनके आगे लोग जाते हैं, वो सबको क्षमा कर देते हैं। हम उनके आगे जाके कहते हैं मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं कपटी हूं, मेरे से ये हुआ, मुझे माफ कर दो। तथास्तु, माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं। ऐसे ही अगर बाबा ने मुझे बड़ा बनाया है और मेरे छोटों से कोई भी ऐसी गलत हो गई गलती, बड़े दिल से उनको माफ कर दो, सब बाबा ठीक कर देगा। सुख भावना रखो, बदल जाए। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो सॉरी करके अपने आप को चेंज करो। ये अगर ध्यान रखेंगे ना तो जो बातें हुई हैं वो समाप्त हो जाएंगी, नहीं तो बातें बार बार मन को खाती रहती हैं, दिल में बैठी रहती, वही चिंतन चलता रहता है। योग में ये सबसे बड़ी रुकावट है। और तीसरी बात ध्यान पर रखना है कि जितना समय हो सकता है मन और बुद्धि को बिजी रखना सीखो। अच्छा अच्छा चिंतन करो, अच्छा लेख लिखो। इसको कोई भी समय फ्री छोड़ेंगे ना तो इधर की बातें उधर की बातें कोई ना कोई बातें डिस्टर्ब करेंगे। मैंने तो जब से जीवन ब्राह्मण जीवन में मधुबन में समर्पित हुआ 41 ईयर हो गए हैं, मुझे एक दिन भी फ्री रहना अच्छा नहीं लगता। जितना हो सकता है जब भी समय मिलता है, नहीं कोई ऐसा काम दिखाई देता है तो ज्ञानामृत लेकर के पढ़ता हूँ, कोई बाबा की अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ता हूँ, कुछ नई रिसर्च करता हूँ, कोई कंप्यूटर खोल के बैठता हूँ, कोई टॉपिक पर पॉइंट्स निकालता हूँ, कुछ न कुछ करता रहता हूँ। मन को इधर उधर फ्री छोड़ेंगे तो इधर उधर की बातें आएंगी। इसलिए जितना हो सकता शरीर को भी थकाना और मन को भी व्यस्त कर देना। ये मन बहुत इधर उधर भटकने वाला है, इसलिए इसको बाबा कई बार कहता है ना ये जिन है। जिनकी कहानी सुनते होंगे मुरली के अंदर आती है, बाबा बहुत रमणीकता से सुनाते हैं। एक जिन था, जिन भूत की कहानी आती है ना, तो एक ऐसा जिन था जो राजा को कहता था मुझे काम दो और नहीं काम दोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो बेचारा राजा जितना उसको काम बताए वो फट से करके आ जाए। तो जिन था, ये तगारी चढ़ा दो, सीमेंट ले आओ, बोरियां उठा के लाओ, फट से ले आता था, काम हो जाता। फिर कहता था और काम दो। तो राजा बड़ा परेशान हो गया, क्या करूं, ये तो मुझे खा जाएगा। तो किसी ने उसको राय दिया, उसको बोलो तो सीढ़ी चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। माना जिनको काम मिल गया सीढ़ी चढ़ना उतरना वो तो कभी पूरा ही नहीं होगा। तो जब उसको ये काम दिया गया कि बार बार चढ़ना है उतरना है चढ़ना उतरना, तो सारा दिन बिजी हो गया बेचारा। अब राजा मुक्त हो गया, मैं तो रोज डर लगता था अब क्या करूं, अब क्या बताऊं इसको। तो बाबा कहता है हे आत्मा राजा, ये तेरे पास जिन मन है, मन जो है ना जिन है, अगर इसको काम नहीं दोगे ना तो तुमको खा जाएगा। खा जाएगा माना कुछ न कुछ गलतियां करा देगा, कर्म इंद्रियों से कुछ न कुछ पाप करा देगा। कभी मुख से करा देगा, कभी आंखों से करा देगा, कभी हाथ से करा देगा, कोई न कोई कर्म इंद्रिय से गलत काम करा देगा। इसलिए मन रूपी जिन्न को तुम अच्छे से अच्छा काम दो और उसको ये काम दे दो। बाबा हमको काम देता है ना बच्चे, 500 रूपों की ड्रिल करो बार बार, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, अभी देवता स्वरूप में चले जाओ, अभी पूज्य स्वरूप में चले जाओ। ये 500 रूपों की दिल करो, मन को बिजी कर दो। और अगर ये मन बिजी हो गया तो मन मनाभाव सहज हो जाएगा। इसलिए जितना समय मिलता है और कुछ नहीं कर है काम, चलो इसको ड्रिल कराते हैं, चलो चल अभी अभी इस साकार वतन को छोड़, देख बाबा कहाँ रहता है सूक्ष्म वतन में। वो लाइट की दुनिया है, लाइट का घर है। ब्रह्मा बाबा लाइट के शरीर में है। हम बच्चों को आह्वान कर रहा है, मेरा भी स्वरूप अव्यक्त वतन में बिल्कुल संपन्न संपूर्ण चमक रहा है। अपने स्वरूप को भी देखो और बाबा के भी स्वरूप को देखो, सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाबा की दृष्टि लो, बाबा के नैनों के सामने हाजिर हो जाओ। ये संकल्प करो, रचना करो संकल्प की, और फिर संकल्प रच करके लाइट हो करके फिर उस लाइट के शरीर को कहो तुम यही रहे, विश्राम कर, मैं चलता हूँ मूल वतन। मूल वतन में बाबा की किरणों के नीचे आत्मा खो करके जैसे शक्तियां ले रहा हूँ। मूल वतन से आए चलो अभी देवता बन करके कितने सुखों की दुनिया में, सतयुग के अंदर कैसे वैभवों के बीच में, सतो प्रधान प्रकृति के बीच में, खुशहाली हरियाली के बीच में कितना आनंदित जीवन है। देवता स्वरूप में आ जाओ, फिर थोड़ा और नीचे उतरो, कितनी मेरी पूजा हो रही, कितने मेरे आगे भक्त खड़े हुए हैं, कितनों की मनोकामनाएं मैं पूर्ण कर रहा हूँ। ये ड्रिल करो, मन को बार बार काम दो, ये मन एकदम बिजी हो जाएगा, इधर उधर के संकल्प समाप्त हो जाएंगे। अगर मान लो ये ड्रिल करने में भी थकावट हो रही, नहीं जाता है मन, देख कहेंगे तो कल्पना है, कैसे जाएंगे, कभी देखा तो ही नहीं, देखा कई बार है हमने लेकिन इन आंखों से तो देखने की बात भी नहीं, अनुभव की बात है। जिसने एक बार इसका अनुभव कर लिया उसकी बुद्धि बार बार जाती रहती है, वो अनुभव की आंख से उसको देख लेते हैं। मान लो इसमें भी नहीं लग रहा है मन, कोई अच्छी जिस बात में लगता, अच्छा गीत सुनो, अच्छा संगीत सुनो, अच्छी प्रकृति की गोदी में बैठ जाओ, कुछ न कुछ वैरायटी। बाबा कहता एक जैसा नहीं करो। मान लो आपकी बीज रूप स्टेज नहीं बनती है, मेरा तो योग नहीं लगता है, मुझे तो मजा ही नहीं आता है, ये ज्वाला रूप योग मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाबा कहता थको नहीं, वैरायटी करोगे तो आनंद आएगा। कभी सुख स्वरूप की स्थिति, कभी प्रेम स्वरूप की स्थिति, कभी आनंद स्वरूप की स्थिति। आत्मा के जो सात गुण है, अगर सातों दिन वैरायटी करें, वैरायटी होगा तो मनोरंजन होगा, कुछ न कुछ नया नवीनता मिलेगी। और नया नया चिंतन करके अपने मन को प्रसन्न रखना, खुश रहना, ये योग की पहली विधि है। अगर भारीपन है, किसी भी प्रकार का बोझ है, मन उदास है, खुश नहीं है, आप कितनी भी मेहनत करते रहो योग नहीं लगेगा। इसलिए योग के लिए चाहिए बहुत आंतरिक खुशी और हल्कापन, बहुत लाइट, सब बाबा के ऊपर सौंप दो। बाबा बार बार कहता है जो तेरे पास है ना जवाबदारियों का बोझ मुझे दे दे, तुम लाइट हो जा। तो जितना हल्के हो जाएंगे ना उतना योग बहुत सहज बैठेंगे और बाबा के पास चले जाएंगे। तो चलें अभी सभी बैठेंगे ऐसे योग में, 7 बजने वाला है, 7 से 7:30 आप योग करेंगे। मैं 5 मिनट योग करा के फिर शांतिवन जाना है, सेवाएं शुरू हो गई हैं, इसलिए मुझे शांतिवन जाना है। आपको मैं 5 मिनट ड्रिल कराता हूँ, फिर योग करना 1/2 घंटा। बहुत अच्छी स्थिति में बैठ करके ज्वालामुखी योग क्या है, मैं और मेरा बाबा, बस ऐसे स्थिर मन से बाबा को याद करो, जो सब संकल्प अपने आप चेंज होकर के बाबा में लौलीन हो जाओ।